नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संसद के शीतकालीन सत्र में देश के लोगों और विकास से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की कल होने वाली मतगणना के सभी प्रबंध पूरे। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख अर्थशास्त्री ने पिछले 4 वर्ष के दौरान भारत के आर्थिक सुधारों की प्रशंसा की। और क्रिकेट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया से एडिलेड में खेला गया पहला टेस्ट मैच 31 रन से जीतकर 4 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त ले ली। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान देश के लोगों और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह जानकारी दी। श्री तोमर ने बताया कि सत्र के दौरान 20 बैठकें होंगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री अरुण जेटली, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव तथा प्रोफेसर रामगोपाल यादव, सीपीआई नेता डी राजा, टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय तथा अन्य नेता बैठक में मौजूद थे। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू द्वारा ऊपरी सदन की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने में आम सहमति बनाने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक जारी है। विपक्षी दलों की भी आज बैठक होने वाली है, जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन निचले सदन की बैठकों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए कल विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मिलेंगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे हिन्दी में एक विशेष परिचर्चा संसद के समक्ष मुद्दे प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम इंद्रप्रस्थ और एफएम गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनावों की कल होने वाली मतगणना के प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के 90 सदस्यीय निवर्तमान विधानसभा में सत्तारूढ़ भाजपा के 49, कांग्रेस के 39 और अन्य के 2 सदस्य हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रदेश में अपना चुनाव भाग्य आजमा रहे 1,269 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कल आ जाएगा। जिन प्रमुख राजनीतिक चेहरों के चुनाव में परिणामों पर लोगों की विशेष नजर रहेगी, उनमें शामिल है मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला, पूर्व मुख्यमंत्री और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रमुख अजीत जोगी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल। प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव में 76% से अधिक मतदान हुआ है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं हितेश रावत।
मध्य प्रदेश में मतगणना की समूची प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि 306 कक्षों में वोटों की गिनती की जाएगी।
मध्य प्रदेश में सभी 51 मतगणना केंद्रों पर प्रातः 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। वोटों की गिनती के लिए 14,000 से ज्यादा कर्मचारियों की सेवाएं ली गई हैं। मतगणना के दौरान प्रत्येक राउंड की समाप्ति पर ईवीएम मशीनों से की गई मतगणना के परिणामों की संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर कर घोषणा की जाएगी। चुनाव आयोग से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार अगले राउंड की गिनती तब तक प्रारंभ नहीं होगी जब तक पहले राउंड की मतगणना की गिनती समाप्त होकर उसके परिणाम डिस्प्ले पर प्रदर्शित न हो जाए। जीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
राजस्थान में 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से 199 सीटों के लिए कल वोटों की गिनती होगी। बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार के निधन के कारण रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव स्थगित कर दिया गया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
सभी की नजरें कल होने वाली मतगणना पर टिकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि मतगणना केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जाएगी। राज्य की दोनों प्रमुख पार्टियों भाजपा तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्ण बहुमत से अपनी पार्टी की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तथा उनकी मंत्री परिषद के कई सदस्यों, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट सहित कई नेताओं के राजनीतिक भाग्य का फैसला होना है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
तेलंगाना में 43 स्थानों पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मिजोरम में मतगणना 13 केंद्रों पर 40 कमरों में की जाएगी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने मतगणना के ताजा रुझानों और परिणामों के विशेष कार्यक्रम के प्रसारण को देखते हुए अपने नियमित बुलेटिनों के समय में परिवर्तन किया है। दोपहर 12 बजे का अंग्रेजी बुलेटिन 5 मिनट के बजाय 10 मिनट का होगा। हिंदी बुलेटिन 12:10 से 12:20 तक प्रसारित होगा। दोपहर के हिंदी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिन की अवधि 15 मिनट बढ़ाई गई है। अंग्रेजी समाचार बुलेटिन 2 से 2:30 तक और हिंदी समाचार बुलेटिन 2:30 से 3 तक प्रसारित किया जाएगा। शाम 6 का अंग्रेजी और हिंदी बुलेटिन भी 10-10 मिनट का होगा। इसके अलावा सवेरे 8:30 से दोपहर 2 तक मतगणना के परिणामों की ताजा जानकारी देने के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। रात 9:30 से 10:30 तक रेडियो ब्रिज कार्यक्रम होगा।
जनादेश
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के परिणाम
मंगलवार 11 दिसंबर 2018
संतुलित और सटीक विश्लेषण सुबह 8:30 से दोपहर 2 तक
विशेष रेडियो ब्रिज कार्यक्रम रात 9:30 से 10:30 तक
सुनना ना भूलें आकाशवाणी के FM गोल्ड राजधानी चैनल और राष्ट्रीय नेटवर्क पर।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल द्वारा विधानसभा भंग करने के फैसले को नोटिस देने वाली याचिका खारिज कर दी है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एसके कौल की खंडपीठ ने राज्यपाल के फैसले पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। शीर्ष न्यायालय पूर्व भाजपा विधायक गगन भगत की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में हजरत निजामुद्दीन की दरगाह के मुख्य मजार पर महिलाओं के प्रवेश की मांग करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस का जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश वीके राव की खंडपीठ ने दरगाह के प्रबंधन ट्रस्ट को भी नोटिस भेजकर 11 अप्रैल 2019 तक अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि शिक्षा विकास की कुंजी है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से देश के विकास में मदद मिल सकती है। आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के एक कार्यक्रम में श्री कोविंद ने कहा कि शिक्षा बच्चे को अच्छा इंसान बनाती है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद पूर्वी उत्तर प्रदेश में शिक्षा के प्रसार में उल्लेखनीय कार्य कर रही है।
देश में युवाओं की सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी संपदा है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि प्रदेश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप को प्रोत्साहन करने के लिए नई नीति लागू की गई है। इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पर IT पार्क तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सुधारों पर विशेष बल दिया जाए। इन प्रयासों से प्रदेश के विकास में युवाओं की भागीदारी और बढ़ेगी।
राष्ट्रपति ने आज गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। श्री कोविंद ने महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैद्यनाथ की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्यपाल राम नाईक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय वित्त मंत्री शिव प्रताप शुक्ला उपस्थित थे। राष्ट्रपति आज शाम 4 के म्यांमा दौरे पर रवाना होंगे। इस दौरान वे नेपिडॉ और यांगून जाएंगे और म्यांमा के राष्ट्रपति यू विन मिंट तथा स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया में आई इस बात को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की आलोचना की है कि उन्होंने और प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली स्थित अपना फार्म हाउस जिग्नेश शाह प्रवर्तित कंपनी को किराए पर दिया था। आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में मीडिया में आई खबरों का उल्लेख करते हुए पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि भ्रष्टाचार और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं।
कोई कंपनी ने अगर घपला किया है, कोई कंपनी अगर स्कैम कर रही है, कोई कंपनी इनकम टैक्स नहीं दे रही है तो तुरंत जाके गांधी परिवार को आप पैसे दे दीजिए, आपको छुटकारा मिल जाएगा।
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज दिया है। वे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग हो रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nrc.in पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री मॉरिस ऑब्सफील्ड ने कहा है कि चार वर्ष में भारत की वृद्धि उल्लेखनीय रही है। उन्होंने मोदी सरकार के जीएसटी और दिवालिया संहिता जैसे मूल आर्थिक सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत भारत में वास्तव में कई मूल सुधार लागू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से गैर बैंकिंग व्यवस्था का जोखिम बना हुआ है, जिसे आमतौर पर शैडो बैंकिंग कहते हैं। भारत में घाटे वाली बुनियादी परियोजनाओं से जुड़े निगमित ऋण बैंकिंग व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, लेकिन सरकार बैंकिंग व्यवस्था की बेहतर निगरानी कर रही है, इसलिए कर्ज शैडो बैंकिंग में चले गए हैं। वित्तीय दबाव से निपटने के लिए इस ओर ध्यान दिया जा रहा है, जो अच्छा संकेत है। वर्ष 2018-19 के लिए नवंबर तक प्रत्यक्ष कर वसूली के स्थायी आंकड़ों के अनुसार कुल 6,75,000 करोड़ रुपए के कर जमा हुए, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 15.7% अधिक है। वित्त मंत्रालय की विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस वर्ष अप्रैल से नवंबर तक की अवधि में 1,23,000 करोड़ रुपए की राशि रिफंड की गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में लौटाई गई राशि से 20.8% अधिक है। बॉम्बे शेयर बाजार में तीसरे पहर के कारोबार में सेंसेक्स में गिरावट का रुख है। अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स 639 अंक गिरकर 35,033 पर था। निफ्टी भी 192 अंक की गिरावट के साथ 10,501 पर आ गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 46 पैसे कमजोर रहा, $1.71.27 का बोला गया। भारत ने एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया से खेला गया पहला टेस्ट मैच 31 रन से जीतकर चार मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त ले ली है। 323 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम 119 ओवर 5 गेंदों में 291 रन पर ऑल आउट हो गई। आज सुबह ऑस्ट्रेलिया ने कल के 4 विकेट पर 104 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया था। जीत के लिए उसे 219 रन की जरूरत थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने अपनी पहली पारी में 250 रन बनाए थे। भुवनेश्वर में हॉकी विश्वकप में आज शाम फ्रांस का मुकाबला चीन से और इंग्लैंड का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और जर्मनी की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री कार्यालय में जनसंपर्क अधिकारी और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश ठक्कर का आज सवेरे नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में निधन हो गया। 72 वर्षीय ठक्कर पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि श्री ठक्कर सादगी और अपनत्व के लिए जाने जाते थे। सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने भी श्री ठक्कर के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। कर्नल राठौड़ ने कहा कि श्री ठक्कर समर्पित और ईमानदार अधिकारी थे। जम्मू कश्मीर में बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा जिलों के ऊपरी इलाकों में अगले 12 घंटों के लिए बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की गई है। लोगों से सावधान रहने और इन जिलों के ऊंचाई वाले स्थानों में जाने से बचने को कहा गया है। ब्रिटेन में वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट की अदालत भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण के बारे में आज अपना फैसला सुना सकती है। करीब 90 अरब रुपए की कथित धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में माल्या की भारत में तलाश है। बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस का 62 वर्षीय मालिक पिछले वर्ष अप्रैल में प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तार किए जाने के बाद से जमानत पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में देश के लोगों और विकास से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की कल होने वाली मतगणना के लिए सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा भंग करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख अर्थशास्त्री ने पिछले 4 वर्ष के दौरान भारत के आर्थिक सुधारों की प्रशंसा की है। और क्रिकेट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया से एडिलेड में पहला क्रिकेट टेस्ट मैच 31 रन से जीतकर 4 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त ले ली है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।